वामनदेव चले वहां तक चले कि रसानंद प्रभु के द्वारा, और उसके बाद श्री गुरुदेव भागवत महात्म के प्रतिपादन और भक्ति के प्रतिपादन के बाद पूर्व राग वेणु गीत में प्रवेश करेंगे।
पहले हम बोलेंगे या वो वामन देव का चरित्र हो जाए,
वामन देव श्री रसानंद प्रभु बताएंगे और उसके बाद आपकी जैसी हम
बताए
वामन देव श्री रसानंद
बोलो। हमारे राधा हम कथा प्रसंग में राधा बोलते देखिए इस शब्द का अंतर।
उसके बाद कल नंदोत्सव की तैयारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले श्री महाराज जी अपने प्रसंग को आगे रखेंगे जिससे हम सबके हृदय में गोपी प्रेम की भावना जागृत रहे। नंदोत्सव के समय क्योंकि आप बहुत जोश और उत्साह में हम सब हो जाते हैं, लेकिन हम ध्यान रखें कि महाराज जी के आने और जाने में कोई कष्ट ना हो। हम लोग नाचेंगे गाएंगे उसी तरह से, क्योंकि नंदोत्सव से जो पलायन कर जाएगा उसको कृष्ण भक्ति कभी नहीं मिलेगी। कृष्ण का हृदय में जन्म ही नहीं हुआ तो फिर भक्ति कैसे। इसलिए पूर्ण जोश और उत्साह के साथ वो मनाएंगे। और कल महाराज जी वेणु गीत गिरिराज गोवर्धन के महात्म के बाद परसों भ्रमर गीत में प्रवेश करेंगे और हम लोग उसको सुनते रहेंगे। तो सबसे पहले करके पाशी दीप महाराज ने आदेश दिया है कि गुरु महाराज की कथाओं का पहले आस्वादन किया जाए और उसके बाद जो मुख्य प्रसंग है वामन देव उसको अंत में रख दिया जाए। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की। तो वर्षा ऋतु की रिंचें और मयूरों का नाचना, भगवान श्री कृष्ण का वृंदारण्य में प्रवेश करना, वृंदावन के हर स्थान पर भगवान राधा कृष्ण के चिन्ह अंकित हैं, अपार सुंदरता का साम्राज्य वहां पर। यदि वृंदावन को देखना है तो गुरु के द्वारा प्रदत्त दृष्टि से देखना होगा। आज के लोग वृंदावन जाते हैं कितने लोग कि वहां पर इतनी गंदगी है इतना ये, तो कुंभन दास के पास और कभी हमारे जी गोस्वामी के पास अकबर गया और उससे कहा कि मैं क्या सेवा करूं यहाँ की। तो किसी के मत के अनुसार कुंभन दास जी, किसी के मत के अनुसार जी गोस्वामी है, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए कि जो कोसी घाट पर एक छोटा सा टुकड़ा टूट गया है उसको बनवा दीजिए। तो अकबर को अपने अहम में बड़ी ठेस लगी कि मैं शहंशाह और मुझसे छोटा सा टुकड़ा बनवाने का आदेश दिया जा रहा है, इतना अपमान। फिर भी चलो, जिनके पास मैं आया हूँ उन्होंने जैसा कहा वैसा कर लो। जब वो कोसी घाट पर पहुंचा तो देखा कि एक छोटा सा जब उसने वहां का सौंदर्य देखा तो हीरों मणियों से सुसज्जित था वो। उसने कहा मैं घाट तो क्या, इसके छोटा सा टुकड़ा जितना मैंने आदेश दिया उसका सौमा भाग भी नहीं बना सकता। तो ऐसी दृष्टि कहाँ से मिलेगी, ऐसा चिंतन कहाँ से मिलेगा, ऐसे भाव कहाँ से जागृत होंगे, कहाँ से आएंगे ये सब भाव। श्री गुरुदेव द्वारा प्रदत्त दृष्टि से कृष्ण मंदिर जगत गुरु कहते हैं ना, तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि कहाँ से प्राप्त हुई, भगवान श्री कृष्ण से। अब श्री कृष्ण तो आएंगे नहीं, तो उनको अपने रूप में ही अपने निज परिकरों को इस पृथ्वी पर भेजना पड़ता है। इसीलिए जो भक्ति और भागवत जानते हैं वो ये कहते हैं कि साक्षात हरिते समस्त शास्त्र, समस्त शास्त्र वेद उपनिषद यही कहते हैं कि गुरु साक्षात भगवान का रूप है। तो जिनको ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त है, आज जब उनके मुखारविंद से हम भी वृंदावन में उन गोपियों के साथ जो भिलनियों की हिरणियों की गोवर्धन के नाच की प्रशंसा कर रही हैं, हम उनके साथ वहाँ प्रवेश करेंगे। बोलो ओम तिरंगी पाशी मत भक्ति वेदांशी नारायण गोस्वामी महाराज की।
ज्ञातिमिरांधस्य ज्ञानंजनसभाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय एतदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायुनो विरवकातर्याजुभाव उत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमानि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमानम्
हमने भक्ति की परिभाषा बतलाई, किंतु उसमें एक प्रधान विवेचनीय है विषय। भक्ति में ममता का तारतम्य होता है। जहां ममता अधिक होगी वहां पर विरह की उपलब्धि भी होती है। जहां ममता नहीं है किसी के लिए विरह नहीं होगा। पिता के प्रति यदि ममता नहीं है, माता के प्रति ममता नहीं है, गुरु के प्रति यदि ममता नहीं है, तो उसके लिए विरह नहीं होगा। मर जाए तो अच्छा है। इसलिए शास्त्रों में बतलाया गया अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगत भक्ति इति उच्यते भीष्म प्रहलाद उद्धवा नारद। अनन्य ममता विष्णु कृष्ण में अनन्य ममता को, ममता को एकत्रित करके उसमें विष्णु अर्थात कृष्ण में लाया गया और प्रेम संगत वो ममता को भक्ति इति उच्यते, इसको भक्ति कहते हैं। भीष्म प्रहलाद उद्धव नारद ये भक्ति के, ये लोग भक्ति के महान भाव लोग हैं, निर्देशक हैं, इनके द्वारा कहा। और भी कहते हैं सम्यक मशणितो स्वांत ममता अतिशयांकित भाव एव स भाव स एव संग्रात्मा बुधै प्रेमा निगच्छति। बुधै जो प्रेम के जो पंडित हैं इसका विवेचन करने वाले हैं वही कहते हैं स्वांत मशणितो उसको कुमलीकृत द्रवीभूत कर दे और ममता देखो। उदाहरण के लिए देखिए पांडवों की कृष्ण में ममता है किंतु उद्धव जैसी ममता नहीं। सखाओं का ब्रज के सखाओं का कृष्ण के प्रति ममता है किंतु मैया जैसी नहीं। कृष्ण का एक सेकंड दर्शन न करें भाव विभोर होकर कृष्ण गए कहां कृष्ण गए कहां कृष्ण गए और खेलने लगते हैं तो उनको याद नहीं है कि कृष्ण ने भोजन किया कि नहीं किया। कृष्ण का भी मैया के प्रति जैसी ममता है सखाओं के प्रति वैसी ममता नहीं है। और गोपियों की जैसी ममता है मैया की भी ममता उतनी नहीं है। कृष्ण के विरह में सखाओं से अधिक मैया विरह मग्न हो गई और उनसे अधिक गोपियां ये भक्ति में तारतम्य है। आप लोगों में भी यदि कृष्ण के प्रति ममता है, जितनी ममता है उस अनुसार में भक्ति है, कृष्ण की भी ममता आप लोगों के प्रति होगी। इसलिए कृष्ण के प्रति ममता हो, ममता समझते मम ममता, ये मेरे हैं दूसरों के नहीं, इसलिए कृष्ण के प्रति ममता होनी चाहिए। ये ममता आएगी कहां से, आएगी कहां से? जसोदा जी ने जन्म दिया कृष्ण का और देवकी जी ने भी जन्म दिया, दोनों की कृष्ण के प्रति किसकी ममता अधिक है? देवकी मैया की ममता है ना जसोदा मैया की ममता है? देवकी की ममता कम गई, यद्यपि उनसे पैदा हुए किंतु शंख चक्र गदा पद्म दिखला दिया ना, तो देवकी जी प्रणाम करने लगे ये आप भगवान हैं, इसलिए उनकी ममता कम गई। ये तो सारे विश्व के हैं, हमारे ही पुत्र नहीं, ममता घट गई है इस वजह से। आज जसोदा मैया को उनको भी विश्वरूप दिखलाया, दूध पीते पीते दांत जरा मुख बाहर कर दिया, विश्व ब्रह्मांड को देखा, कहीं इसको भूत लग गया, किसी की नजर लग गई, काली गैया मंगाया, उसका गोबर और मूत्र मिला करके उनको स्नान किया, ब्राह्मणों को लाखों गैया दान, उनका ऐश्वर्य भाव नहीं घटा। इसलिए ममता जसोदा जी की है, इसलिए कृष्ण मैया के लिए भी वैसे ही तड़पते हैं। तो ये बात आप लोग भी ठीक रखेंगे। अब इसी ममता को लेकर के भक्ति का हम तारतम्य बतलाएंगे। पांडवों की कृष्ण के प्रति ममता है, किंतु उद्धव जी उनके भाई हैं, छोटे वसुदेव जी के छोटे भाई उनके पुत्र हैं उद्धव जी, इसलिए भाई की ममता कुछ और हो गई। और उद्धव बचपन से ही, जब से ही उनका जन्म है, कृष्ण के प्रति बड़ा अनुराग उनका है। जहां कृष्ण को कोई जरूरत पड़ती है तो वे उद्धव जी को प्रतिनिधि बना करके भेजते हैं, विष्णीनां प्रवर मंत्री विष्णीनां, विष्णियों के वंश में, जो वंश के अंतर्गत में विष्णी वंश, उसमें प्रवर श्रेष्ठ है, उसमें अक्रूर जी भी हैं, महाराज उग्रसेन हैं और सब लोग हैं, किंतु प्रवर उसमें एक श्रेष्ठ है। किसलिए श्रेष्ठ? श्रेष्ठ है इसीलिए कृष्ण के मंत्री हैं। मंत्री माने क्या? जहां अपनी अकल ना चले तो दूसरों से परामर्श लेना, ये मंत्रित्व का कार्य है। तो जहां कृष्ण की अकल नहीं काम करती वहां पर भी उद्धव जी को बुला लेते हैं और उनके उनको हाथों को अपने हाथ में रख करके कहते हैं कि सखा मेरे सलाहकार हमें परामर्श दो, मैं क्या करूं, अभी मैं हस्तिनापुर जाऊं या जरासंध को मारूं, क्या करूं? तो उद्धव जी परामर्श देंगे, अभी हस्तिनापुर जाने की जरूरत नहीं है, हस्तिनापुर जाने की जरूरत है रायसू यज्ञ कराइए और पहले शिशुपाल को मारिए, इसके बाद में जरासंध को मारा जाएगा अपने आप। जहां परामर्श की जरूरत है तो समझिए भाई लौकिक लीला में
भगवान को कौन परामर्श दे सकता है? पहले सोई जराम और रची राखा, उनको परामर्श देने वाला कोई नहीं है। किंतु लौकिक लीला में बिना परामर्श का उनका कोई काम नहीं चलता। मंत्री कृष्णस्य दैत अत्यंत प्रिय सखा, सखा भी है। एक साथ देखिए कितने गुण, शिष्य, शिष्य भी है और बृहस्पति शिष्य कृष्ण के शिष्य हैं और फिर इधर बृहस्पति के शिष्य। बुद्धि सप्तम परम बुद्धिमान, प्रेष्टम, प्रेष्ट माने क्या होता है? असामान्य प्रिय और भक्तम एकांतिक, और एकांतिक भक्त हैं। इतने गुण इनमें हैं, इसलिए पांडवों से भी ममता कृष्ण के प्रति है। यदि इनको कहीं प्रतिनिधि के रूप में भेजना होता है तो उद्धव को भेजते हैं। कहीं भी ब्रज में भेजने के लिए उनको कोई नहीं मिला। कृष्ण गुरु संदीपनी के यहां से 64 कलाओं, 64 विद्याओं को पढ़ करके आए हैं। दक्षिणा भी दिया, गुरुपुत्र मर गया था, उसको जमपुरी से लेकर के और उनके मैया को सौंप दिया। और जब यहां आए सुना सुना लगा, विशेष करके बसदेव जी के राजमहल पर बैठकर जब उत्तर दिशा में देखा, वृंदावन की तरफ में देखा, उस समय रोने लगे। मैया की याद आई, पिता की याद आई, गोपियों की याद आई, सखाओं की याद आई, गैयों और बछड़ों की, गोवर्धन की, नंद, सब लीला स्थलियों की उनको याद आई और विरह में वो रह न सके। ममता, ममता है ना, कृष्ण के प्रति जितनी ममता होगी कृष्ण की भी ममता बसे। जे जथांग माम प्रपद्यन्ते, बस एक ही जगह कृष्ण ये सफल नहीं कर सके। ये वाणी गीता की कहां, गोपियों के विषय में नहीं कर सके, वहां पर हार गए, हार गए। तो वो विरह में छटपट छटपट करते हुए छत के ऊपर में चले गए और वहीं रो रहे थे। इतने में उद्धव जी खोजते हुए वहां पर उपस्थित थे और उनके हाथों में हाथों लेकर कृष्ण रोते हुए कहने लगे, गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्य पितृणौ प्रतिमा वह गोपी नांग मद वयोगावधि मत संदेश विमोचय। प्रिय उद्धव ब्रज में जाओ और वहां मेरे माता पिता मेरे विरह में तड़प रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया है, मैया अंधी हो गई है, पिते भी पिताजी भी सूख करके केवल हार्ड लग गए हैं। जाओ उनको समझाओ और गोपीनाम मैं मत वियोगावधि, किंतु गोपियों के लिए क्या करते हैं? गोपियां मत वियोग अवधि, उनको समझा जाओ, उनको समझाने की चेष्टा मत करना, न तो उनका वियोग और बढ़ जाएगा। हां मैं जो ये संदेश दे रहा हूं, ये संदेश दे करके उनके विरह को कम करना और देखना कहीं बढ़ न जाए, अपनी बुद्धि लगाएगा तो उनका वीरा बढ़ जाएगा। इसलिए कोई चेष्टा मत करना, मेरे संदेश को देना। क्या संदेश? मैं आ रहा हूं, मैं आई गया, मैं समझो जो मैं आ गया, मैं सत्य करूंगा अपने वचन को। इस तरह से मेरे संदेश से उनको उनका जो विरह है, यहां पर भी ये स्पष्ट बतला रहे हैं, माता पिता का जो कृष्ण के प्रति ममता है उससे गोपियों की ममता और विरह भी अधिक है। जहां ममता अधिक होगी वहां विरह, जहां ममता नहीं हो आप विरह नहीं होगा। प्रेम का यही एक लक्षण है गोपियों के संबंध में, वो विस्तार है। क्या? तामन मनस्का मत प्राण मदर्थ तैत दैहका। मन मनस्का गीता के अंत में सारे उपदेशों में समस्त उपदेशों का भी उपदेश, सार उपदेश, चार प्रकार के उपदेश दिए हैं। कौन कौन? एक अंतिम है मनमना भव मद भक्तो मद नमस्कार। मन मनस्का का उदाहरण एक देता हूं, बहुत जगह दिया है फिर यहां पर भी बतला देता हूं। कोई नवेली अभी विवाहित नंदगांव में आई, अभी नवेली थी, बहुत दूर से अपने माता पिता के घर से ही कृष्ण का नाम तो सुना था नंदनंदन का, किंतु अभी तक देखा नहीं था। तो घर में आई तो उसकी सास समझा रही थी, देखो अब 9 बजने जा रहा है, कुर्बान होने जा रहा है, एक काला सा लड़का गोवा चराने आएगा, मत जाना, निकल करके उसे देखना, मत जाना कभी। और उसी समय में कृष्ण बंसी बजाते हुए हजारों लाखों सखाओं के साथ में, लाखों बछड़ों के साथ निकले, बछड़े खुदकते हुए मानो गंगा और यमुना की तरह सफेद एकदम, और कृष्ण बंसी भी बजा रहे हैं। उस नवेली ने सुना, मुग्ध हो गए, तो वो जाने के लिए दरवाजे के पास में जाने के लिए या खिड़की के पास में जाकर के दर्शन करने के लिए लालायित होकर चलने लगी। उसकी सास ने मत जाना, नहीं तो काला नाक काट देगा और उसका विष उतरेगा नहीं। उसने कहा तो तुम्हारी बेटी क्यों गई, उसको काटेगा नहीं, और तुम क्यों जा रही हो, हम भी जाएंगे जरूर, चाहे घर से निकालो चाहे जो कुछ करो। वो मानी नहीं और उसकी अवहेला करके दरवाजे की ओट में खड़ी होकर के देखने लगी, और इतने कृष्ण ने देखा। कृष्ण किसी की अभिलाषा को पूर्ण नहीं कर सकते, यह नहीं हो सकता। देखा जी बहुत दिनों से तपस्या कर रही, लालायित थे मेरे दर्शनों के, तो ठीक है। एक बछड़े की पूंछ उन्होंने थोड़ी सी छू दी और वो कुत्ता हुआ ठीक वहीं पर पहुंचा जहां पर वो खड़ी थी पास में, बस कृष्ण वहीं पर पहुंच गए और उसकी ठोड़ी में बंसी लगा दी। वो प्रेम में गदगद हो गई और फिर बछड़ों को लेकर के चले गए। वो बेचारी तब तक खड़ी रही जब तक कि कृष्ण आंखों से ओट में न चले गए। धूल उड़ रही थी, धूल भी उड़ना बंद हो गई और ज्यों की त्यों खड़ी रह गई, क्योंकि मन तो है नहीं, मन तो कृष्ण ले गए। थोड़ी देर के बाद मुझकी सास आई, कहा ना काला नाक काटेगा, इसका विष उतरेगा नहीं, चलो चलो भर भीतर घर चलो। पकड़ करके ले आई, कहा जैसे दही, ये दही मंथन करो, क्योंकि दही मंथन करने से थोड़ा सा मन इधर उधर हो जाएगा, होश में आएगा।
जाओ दही की मटकी ले आओ और यहाँ पर मंथन करो। तो वह दही की मंथन मटकी लाने गई तो सरसों की मटकी पड़ी थी, वो रखा था, वो सरसों ले आई और सरसों ही मथने लगी। थोड़ी देर के बाद में आई, अरे ये क्या, तो सरसों मंथन कर रही है, दही मंथन कर, जाओ पानी ले आओ। तो ब्रज में पानी नमकीन होता है, बहुत दूर पर बहुत मुश्किल से दो एक कुएं अच्छे मीठे पानी के होते हैं। तो उसको एक घड़ा, उसके बाद में घड़ा, एक घड़ा दूसरा घड़ा दे दिया। ब्रज में ये रीति है, वो घड़े दे देंगे तो वो चाहे वो पांच घड़े हो, वो टस से मस नहीं, उसको छूने की जरूरत नहीं, ऐसे चल रही है, दौड़ भी रही है, कोई बात नहीं। हाथ में रस्सी दे दी, डोल दे दी, और एक छोटे से बच्चे को भी उसके उसके गोदी में दे दिया। इतने लेते ले करके वो चलने लगी, अभ्यास बस तक कुएं पर गई, जहां पर और भी महिलाएं कुएं पर पानी भर रही थी रोटियां। वहां पर अपने मटके को रखा, डोर बाल्टी को रखा, और उस बेचे बच्चे को भी उतार करके वहां रख दिया। और फिर वो डोल में लगाएगी वो रस्सी, तो बच्चे के गले में रस्सी लगाना आरंभ किया। और उसी को ये भी होश नहीं कि ये बेचा है, बच्चा है या घड़ा है, मन है नहीं तो क्या करे, उसका दोष क्या है। बस उसको जब ही गले में लगाया तब ही दूसरे गोपियों ने कहा, अरे इसको भूत लग गया, ये देखो तो कैसे ये इसको बच्चे को गले में लगा गए। आज जो जानने वाली थी उन्होंने, ये भूत नहीं नंद का पूत लगा है। वहां से फिर किसी प्रकार से घर लाई, सब लोगों ने पकड़कर उसको लाया। ये है मन मनस का, मन दो तो परिपूर्ण रूप से दो, आधा मन नहीं लेंगे, टुकड़ा मन नहीं लेंगे। अभी हम लोगों का मन कहां पड़ा है, कुछ टुकड़ा पड़ा है घर में, कभी स्त्री में, पुत्र में, परिवार में, इधर उधर, अर्थ में, पद में, चारों तरफ मन में मन बिखरा पड़ा है। कृष्ण ऐसे मन को नहीं, मन मनुष्य का। तो ये ताम मनुष्य का कृष्ण अपने आप का है। गीता में हमने कुछ लक्षण तो दिए हैं, उदाहरण नहीं मैंने दिया। आज खुद कृष्ण उसका उदाहरण कर, मन मनस का कौन, ताम मनस का कौन, वो गोपियां मन मनस का। पिता माता के लिए नहीं कहा है, किंतु ऐसे नहीं है। मत प्राण, मैं उनका प्राण हूं, मैं प्राण हूं। अब तक तो वो मर जाती विरह में, किंतु मर इसलिए नहीं गई कि उनका प्राण मैं हूं, मैं निकलता नहीं, नहीं तो मर जाता। अथवा मत प्राण, मेरे प्राण है। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही उनका प्राण हूं, मेरे लिए वो प्राण, प्राण के समान प्रिय है। मदर्थे तक्त दैह का, हमारे लिए देह दैहिक की जितनी भी क्रियाएं हैं सब कुछ वो भूल गई, छोड़ दिया। देह अर्थात तो खाना पीना इत्यादि, दैहिक देश के संबंध में जो कुछ है दैहिक, स्त्री पुत्र पति सब कुछ हमारे लिए भूल गए। ऐसा प्रेम हो तब तो कृष्ण से प्रेम होगा, जरा सोचो ऐसा प्रेम कोई दे सकता है उनको, तैयार हो जाओ आज ही कृष्ण मिल जाएंगे, तुम्हारे पीछे पीछे ढूंढेंगे, बंसी लेकर के ठोंठ में लगा देंगे, मन को ले लेंगे। कितना कितना मिनट, दैत्य दैत्य का मां देव दैत्यम, मेरे वे दैता हैं, अथवा उनका मैं दैत्य हूं, सबसे प्रिय हूं, और कोई प्रिय है ही नहीं है, मैं ही क्यों हूं। कृष्ण के लिए उन्होंने पतियों को छोड़ दिया ना, परवेशन कर रही थी, बंसी बजी पूर्णिमा को और बस चल पड़े, केश का प्रसादन कर रही थी उसको भी छोड़ दिया,
पति को परवेशन कर रही थी वो भी छोड़ दिया, बच्चों को दूध पिला रही थी छोड़ दिया, रोटी बना रही थी रोटी तवे पर जल गई चल पड़े, सारी देह दहक वो बोल जाती है। तो माम ये बदतम पृष्ठम आत्मानम मनसा होता वो पृष्ठ आत्मानम मनसागत, यदि मैं न लू तो मर जाए वो, इसलिए जे तैत लुक धर्मांश मदर्थे तान वेद धर्म ओ ऐसा जिन्होंने कर दिया है, ऐसा जगत में कोई है वो एकमात्र गोपियां ही है, उदाहरण के लिए दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। जे तैत लोग उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है उनका मुझे पालन करना चाहिए ना, मैं ठीक से पालन नहीं कर पा रहा, पालन कर उद्धव जाओ मेरी सहायता करो तुम मेरे मित्र हो। मैता प्रियसं पृष्ठे दुरस्ते गोकुल स्त्रिय स्मरंतो अंग व्यौमी विरह कंठ भी पड़ा। मैता प्रियसा वे मेरी प्रियाएं हैं, मैं उनका प्रियतम हूं। आज वो दूर गोकुल में है, कितने दिनों से, कितना दिन हो गया कृष्ण गोकुल वहां पर गुरु गृह में कितने दिन थे, 64 दिन। एक पलक भी जिनको कृष्ण को नहीं देखने से जीवित नहीं रह सकती थी, मैया से लेकर के गोपियां और सखा और सब लोग, वहां के प्राणी मात्र भी मयूर कोकिल वहां के बछड़े गाय विशेष करके गोपियां, आज वो दूर कितने गोकुल में है, गोकुल और मथुरा दूर नहीं है, भाव की दूरी है। इस बार हम पीछे विचार दिखलाएंगे क्यों मथुरा आए, प्रेम रूप जहां अधिक मिलता है वहां पर हम रहते हैं, उस स्थान को छोड़कर के दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। तो कृष्ण को तो मथुरा में उतना प्रेम नहीं मिलता था जितना कि ब्रज में मिलता था, तो उसको छोड़कर के क्यों आए, बहुत से कारण है पीछे देखेंगे। स्मरण त्यो अंग हे प्रिय दृश्य उत्कंठित होकर के उत्कंठित हैं, आप जल्दी से जाकर के धारण ज्योति कृष्णेन प्राय प्राण कथंचन, किसी प्रकार से अपने प्राणों को धारण करके जीवित हैं, किस लिए जीवित है, कृष्ण ने कहा था आते समय क्या कहा था, आयास से दौत दौत बने निजे ही गोपियों से कहा था, जब गोपियां रथ के आगे खड़ी हो गई अक्रूर के सामने सत्याग्रह कर लिया, तो कृष्ण ने कहा मैं जल्दी से आऊंगा, कल नहीं तो परसों जरूर आ जाऊंगा, इसलिए परसों वहां ग्राम है, आजनाओं के एक ग्राम है जहां पर रासलीला में जब कृष्ण ने बंसी बजाई तो राधा जी एक आंख में अंजन किया था दूसरे आंख में अंजन नहीं किया, ऐसे ही चल गई, कृष्ण कहा जी इस आंख में क्यों नहीं अंजन लगाया, तो सखी ने कहा जी मैं अंजन कर रही थी किंतु ये वहीं से दौड़ गई और अंजन ने तो कृष्ण ने अपने आप अंजन किया थी। अजनों जितने ब्रज में गांव हैं अभी भी कृष्ण गांव का स्मरण रहा, इसलिए 84 क्रोश की परिक्रमा प्रति वर्ष बहुत लोग करते हैं, मैं तो आज कितने 50-60 वर्ष से ही ब्रजमंडल की परिक्रमा करता हूँ, आप लोगों को भी निमंत्रण करता हूँ कि आप लोग आइए और वहाँ का आनंद देखिए कैसा, ब्रज की लीलाओं का एकदम साक्षात प्रमाण आपको मिलेगा और दर्शन करेंगे। हाँ उनकी दल उनका आया है मंडली आए नहीं, हाँ तो धरो
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम अनुपम।
क्षमा करना, लेट हो गया। कल वो हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन था इसलिए आ नहीं पाया, कल मैं जल्दी आऊंगा।
आप नहीं आने से सुना रहता
है,
आप नहीं आने से सुना सा रहता है, आप जरूर आएंगे।
मैं जरूर आऊँ। आज मैं आपके लिए वो लेके आया हूँ, तरबूज लेके आया हूँ। कल गोविंद देव जी का प्रसाद ला रहा हूँ।
गोपियों के विरह का वर्णन कर मन रो लागे न,
हो मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे
मेरे साथ में मथुरा में कृष्ण अट्टालिका पर है और अर्जुन से मिले। कृष्ण सोच रहे हैं मैं यहां सुना सुना रहता हूं, हमारे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं गोपियां तो लाखों हैं कृष्ण के विरह में उसमें छटपटा रही है, ललिता विशाखा तो उनको संतना दे रही है, अपने अपने दुखों को अपने अपने परस्पर बातचीत करके उसको लाघव कर देती है, कम कर देती है, किंतु कृष्ण किस से बातचीत करे, उनका कोई समझातीय व्यक्ति नहीं है जो कृष्ण अपने मन का दुख विरह की व्यथा दूसरों से कह करके अपने व्यथा को कम कर सके। सोचा जिस पाठशाला में मैंने प्रेम का पाठ पढ़ा है ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा पंडित हो, ढाई अक्षर है, जिसने प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा उसका जीवन व्यर्थ है। संसारिक जीवन में भी प्रेम लेना नहीं देना देना चाहता, प्रेम का यही लक्षण है वो कुछ मांगना नहीं चाहता, बिक जाओ बिना मोल के उनके चरणों में, इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं जहां पर मैंने प्रेम का पाठ पढ़ा है। इसके पहले आप लोग एक समझने की चेष्टा करें, प्रेम के दो पहलू होते हैं, एक विषय प्रेम का विषय और एक प्रेम का आश्रय। कृष्ण प्रेम के विषय हैं, सबके आराध्य हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके आराध्य नहीं है सबके, और वे सख्य वात्सल्य मधुर इत्यादि रसों के आस्वादक हैं, आस्वादन करते हैं, इसलिए वो विषय है। और भक्त प्रेम के आश्रय हैं, और इन जितने प्रकार के भक्त हैं उनसे उनकी लादनी शक्ति श्रीमती राधिका जी सर्वश्रेष्ठ हैं, ये प्रेम का सर्वोच्च आश्रय। हमें जिस प्रेम की आवश्यकता है वो कृष्ण में नहीं है, किसमें है? प्रेम करो कृष्ण से कैसा, राधा जी जैसे, गोपियों जैसा, इसलिए गोपियां प्रेम का विषय है, आश्रय है, कृष्ण प्रेम का विषय होकर के आस्वादन करके गोपियों को देख करके गोपियों के प्रेम को आस्वादन करके कृष्ण को कैसा आनंद होता है सुख होता है ये तो कृष्ण समझते हैं, किंतु गोपियां और विशेष करके राधिका इत्यादि जो कृष्ण को सेवा कर जिस प्रेम रूपी सुख को आस्वादन करती हैं कृष्ण को इसको पता नहीं, कृष्ण नहीं जानते हैं, इसीलिए इस प्यास को मिटाने के लिए राधा जी का भाव और कांति लेकर के नवदीप में वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में पधारे थे, इसी भाव आज वही यहां पर चिंता कर रहे हैं। मैं गोपियों की पाठशाला में जहां पर प्रिंसिपल कौन है, राधा जी स्वयं, और एक एक डिपार्टमेंट के हेड ललिता विशाखा ऐसी चित्रा इत्यादि ये सब डिपार्टमेंटल प्रधान हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और वहां पर मैं पाठ सीखता था और वो पाठ की शिक्षा देती थी, इसी पाठ राधिका जी का प्रेम क्या है, चैतन्य महाप्रभु के लीला में राय रामानंद के पास में महाप्रभु जी ने अर्थात कृष्ण ने ही यही पाठ पढ़ा, तब गंभीरा में आकर के आस्वादन किया। तो मैं यदि ये उद्धव वहां जाए और वहां पर पाठ पढ़े प्रेम का, ये प्रेम कैसे कृष्ण को किया जाता है, तो सीख करके आएगा तो उसे दो चार बातें कर सकूंगा। ब्रज में मैं नहीं जा सकता, ब्रज में जाऊं कैसे? ब्रज में जाने से गोपियों का विरह और बढ़ जाता है, भावी विरह से बड़ी भारी समस्या है। ये प्रेम वैचित्र्य है, यही मातानख्य भाव है जो राधिका में ही है और कृष्ण में, ललिता विशाखा में भी नहीं है वो भाव। उनका विरह और बढ़ जाता है, ये कृष्ण कहीं चले न जाए, इसलिए उद्धव जाए। उद्धव जी को भेजा अपने रथ पर, सोने के रथ पर, कंस का सोने का रथ जिसपे अक्रूर किया था, और भेजा। एडमिशन लेने के पहले जो टीचर्स होते हैं इनकी परीक्षा लेते हैं, एडमिशन होने योग्य है कि नहीं, कितना परसेंट मार्क आया है, और सब देख करके वहां पर उससे कुछ पूछेंगे। तो उद्धव जी की परीक्षा ली गई, गोपियों ने ली, और उस परीक्षा में फेल हो गए, एडमिशन लेने योग्य नहीं रहे। उन्होंने केवल क्या किया है, उस भवन को देखा, शिक्षागार को, शिक्षकों को देखा, किंतु पाठशाला में एडमिशन नहीं ले सके। और जो दूर से जो कुछ देखा उसी का कुछ ज्ञान लेकर के उद्धव जी लौटा जाए, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, कृष्ण से बोल तुम्हारा सौभाग्य है कि एडमिशन नहीं हुआ, किंतु उन शिक्षकों को और सब लोगों को तो तुम देख करके आए हो, कुछ न कुछ तो जरूर ज्ञान। कितना दिन, 4 महीने रहे थे, 6 महीने ब्रज में रहे। कोई भाव यदि लेते तो ऐसी प्रार्थना क्यों करते, आशा महो चरण रेणी जुषाम हम श्याम वृंदावने किम गुल्म लताओ सदी नाम जस्त सजन सजन आर्य पथन चहित्वा भेजे मुकुंद पद बिन सुत भेद। श्रुतियां जिनको ढूंढ रही हैं और वो मिलते नहीं, उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं जो कृष्ण, उनके वशीभूत हैं कृष्ण। ऐसी जो गोपियां हैं उनके चरणों की रज पाने के लिए जब वो जा रही हैं अभिशार में कृष्ण के लिए मिलने के लिए, कहीं लता गुल्म बन जाता और उनके चरणों की धूलि से मैं अभिषिक्त हो जाता, मेरा जीवन सार्थक हो जाता। वंदे नंद ब्रजय स्त्रीणाम पादरेणम महाभिष्णस जासान भरी कथोद्गीत पुनादि गोरथ। ओ नंद ब्रज की जो गोपियां हैं उनकी महिमा का मैं क्या वर्णन करूं, विरह में उनके मुख से जो कुछ निकला, जो श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत इत्यादि में जो वर्णन किया गया है वो कौन कर सकता है, वो गोपियों के द्वारा ही सुनता है। कभी खींचती हैं, कभी रुष्ट होती हैं, कभी गाली गलौज करती हैं, कभी कुछ करती हैं, फिर एकदम कैसे शांत बन जाती हैं। इस तरह से ऐसा भाव कहीं भी विश्व के किसी भी साहित्य में नहीं मिलेगा जो श्रीमद् भागवत। इसलिए निगम कल्प तरो गलितम सुखम अमृत शांतितम पिवत भागवतम रसमालयम भोर, ऐसा कहा। निगम कल्प तरु का एकदम प्रपक्व गलित फल है जिसमें गुठली नहीं है, रेशे नहीं है, छिलका भी नहीं है, गुरु परंपरा के माध्यम से हुआ है। प्रेम की ध्वजा है गोपियां, कृष्ण स्वयं कहते हैं न पारे हम निर्वत्त सैनिक, मैं तुम्हारा निमित्त से उन्मुक्त नहीं, अपने साधु गुणों से ही तुम मुक्त हो सकती हो। इस तरह से उद्धव जी लौट करके आए, वारण नहीं सके। हां प्रार्थना में जो है तीन लता गोली बन जाओ। तब ये उद्धव कुंड वहां एक है, उद्धव कुंड में घास बने हुए हैं अभी भी अभिशाप होता है, कृष्ण की लीलाएं होती हैं, अभी भी वहां लीला हो रही है, किंतु इस समय जो माया का संपर्क हम लोगों से नहीं है इसलिए नहीं देख पाते, किंतु ब्रज में सब समय कृष्ण की लीलाएं होती हैं। इसका प्रमाण भी है, ब्रज में लीला होती है, वृंदावन में सेवा कुंज है, रात में बंदर लोग अपने आप भाग जाते हैं, कोई भी कोई आदि व्यक्ति नहीं रह सकता, और रात में यदि कोई रह जाए तो वो पागल हो जाएगा या मर जाएगा, यह भी मार्ग में है, कह नहीं सकता। कभी परीक्षा करने के लिए कोई गए, जीत पकड़ करके नहीं गए बाहर, वहीं रह गए और रात में मर गए, दूसरा एक पागल बन गया जो कभी आज तक बात ही नहीं किया। ब्रज में लीलाएं होती है, कभी कभी कोई वैसा भक्त उसको दर्शन करता है, संत लोग दर्शन करते हैं। तो इस तरह से ये उद्धव जी का महात्मा हमने बनता है, क्योंकि व्यक्ति नहीं मिला कृष्ण को जो प्रतिनिधि रूप में अपने माता पिता को सांत्वना जाने के लिए, गोपियों को सांत्वना देने के लिए भेजा, ये उद्धव की महिमा है, इनमें ममता है कृष्ण के प्रति। आज यही तक रहे, अभी अब कल बताएंगे।
Oh,
अब आइए आप लोग के मेरे साथ मथुरा में कृष्ण अट्टालिका पर है और उनसे उठे कृष्ण सोच रहे हैं मैं यहां सुना सुना रहा था हमारे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं गोपियां तो लाखों हैं कृष्ण के विरह में उसमें छटपटा रही है ललिता विशाखा तो उनको सांत्वना दे रही है अपने अपने दुखों को अपने अपने परस्पर बातचीत करके उसको लाघव कर लेती है कम कर लेती है किंतु कृष्ण किससे बातचीत करें उनका कोई समझातीय व्यक्ति नहीं है जो कृष्ण अपने मन का दुख विरह की व्यथा दूसरों से कह करके अपने व्यथा को कम कर सके सोचा जिस पाठशाला में मैंने प्रेम का पाठ पढ़ा है ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा पंडित हो ढाई अक्षर है जिसने प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा उसका जीवन व्यर्थ है संसारिक जीवन में भी प्रेम लेना नहीं देना देना चाहता है प्रेम का यही लक्षण है वो कुछ मांगना नहीं चाहता बिक जाओ बिना मोल के उनके चरणों में इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं जहां पर मैंने प्रेम का पाठ इसके पहले आप लोग एक समझने की चेष्टा करें प्रेम के दो पहलू होते हैं एक विषय प्रेम का विषय और एक प्रेम का आश्रय कृष्ण प्रेम के विषय हैं सबके आराध्य हैं ऐसा कोई नहीं है जिसके आराध्य नहीं है सबके और वे सख्य वात्सल्य मधुर इत्यादि रसों के आस्वादक हैं आस्वादन करते हैं इसलिए वो विषय है और भक्त प्रेम के आश्रय हैं और इन जितने प्रकार के भक्त हैं उनसे उनकी लादनी शक्ति श्रीमती राधिका जी सर्वश्रेष्ठ हैं ये प्रेम का सर्वोच्च आश्रय हमें जिस प्रेम की आवश्यकता है वो कृष्ण में नहीं है किसमें है प्रेम करो कृष्ण से कैसा राधा जी जैसा गोपियों जैसा इसलिए गोपियां प्रेम का विषय है आश्रय है कृष्ण प्रेम का विषय होकर के आस्वादन करके गोपियों को देख करके गोपियों के प्रेम को आस्वादन करके कृष्ण को कैसा आनंद होता है सुख होता है ये तो कृष्ण समझते हैं किंतु गोपियां और विशेष करके राधिका इत्यादि जो कृष्ण को सेवा कर जिस प्रेम रूपी सुख को आस्वादन करती हैं कृष्ण को इसको पता नहीं कृष्ण नहीं जानते हैं इसीलिए इस प्यास को मिटाने के लिए राधा जी का भाव और कांति लेकर के नवदीप में वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में पधारे थे इसी भाव आज वही यहां पर चिंता कर रहे हैं मैं गोपियों की पाठशाला में जहां पर प्रिंसिपल कौन है राधा जी स्वयं और एक एक डिपार्टमेंट के हेड ललिता विशाखा ऐसी चित्रा इत्यादि ये सब डिपार्टमेंटल प्रधान हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और वहां पर मैं पाठ सीखता था और वो पाठ की शिक्षा दे रही थी इसी पाठ राधिका जी का प्रेम क्या है चैतन्य महाप्रभु के लीला में राय रामानंद के पाठ में महाप्रभु जी ने अर्थात कृष्ण ने यही पाठ पढ़ा तब गंभीरा में आकर के आस्वादन किया। तो मैं यदि ये उद्धव वहां जाए और वहां पर पाठ पढ़े प्रेम का, ये प्रेम कैसे कृष्ण को किया जाता है, तो सीख करके आएगा तो उसे दो चार बातें कर सकूंगा। ब्रज में मैं नहीं जा सकता, ब्रज में जाऊं कैसे? ब्रज में जाने से गोपियों का विरह और बढ़ जाता है, भावी विरह, बड़ी भारी समस्या है। ये प्रेम वैचित्र्य है, यही मालानख्य भाव है जो राधिका में ही है और कृष्ण में, ललिता विशाखा में भी नहीं है वो भाव। उनका विरह और बढ़ जाता है कि कृष्ण कहीं चले न जाए, इसलिए उद्धव जाए। उद्धव जी को भेजा अपने रथ पर, सोने के रथ पर, कंस का सोने का रथ जिस पर अक्रूर किया, और भेजा। एडमिशन लेने के पहले जो टीचर्स होते हैं इनकी परीक्षा लेते हैं, एडमिशन होने योग्य है कितना परसेंट मार्क आया है, और सब देख करके वहां पर उससे कुछ पूछेंगे। तो उद्धव जी की परीक्षा ली गई, गोपियों ने ली, और उस परीक्षा में फेल हो गए, एडमिशन लेने योग्य नहीं रहे। उन्होंने केवल क्या किया है, उस भवन को देखा, शिक्षादार को, शिक्षकों को देखा, किंतु पाठशाला में एडमिशन नहीं ले सके। और जो दूर से जो कुछ देखा उसी का कुछ ज्ञान लेकर के उद्धव जी लौटा जाए, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, कृष्ण से बोल तुम्हारा सौभाग्य है कि एडमिशन नहीं हुआ, किंतु उन शिक्षकों को और सब लोगों को तो तुम देख करके आए हो, कुछ न कुछ तो जरूर ज्ञान। कितना दिन, 4 महीने रहे थे, 6 महीने ब्रज में रहे, कोई भाव यदि लेते तो ऐसी प्रार्थना क्यों करते? आशाम हो चरण रे जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमत गुल्म लताओ सदीनाम, जस्त सजन सजन आर्य पथन चहित्वा भेजे मुकुंद पदविन सुत भेद। श्रुतियां जिनको ढूंढ रही हैं और वो मिलते नहीं, उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं जो कृष्ण, उनके वशीभूत हैं कृष्ण। ऐसी जो गोपियां हैं उनके चरणों की रज पाने के लिए जब वो जा रही हैं अभिशार में कृष्ण के लिए मिलने के लिए, कभी लता गुल्म बन जाता और उनके चरणों की धूलि से मैं अभिषिक्त हो जाता, मेरा जीवन सार्थक हो जाता। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम महाभिष्णस जासान भरी कथो उद्गीत पुनः। ओ, नंद ब्रज की जो गोपियां हैं उनकी महिमा का मैं क्या वर्णन करूं, विरह में उनके मुख से जो कुछ निकला, जो श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत इत्यादि में जो वर्णन किया गया है वो कौन कर सकता है, वो गोपियों के द्वारा ही सुनता है। कभी खींचती हैं, कभी रुष्ट होती हैं, कभी गाली गलौज करती हैं, कभी कुछ करती हैं, फिर एकदम कैसे शांत बन जाती है इस तरह से। ऐसा भाव कहीं भी विश्व के किसी भी साहित्य में नहीं मिलेगा जो श्रीमद् भागवत, इसलिए निगम कल्प तरोगलितम सुखम अमृत शांतितम पिवत भागवतम रसमालयम भोर, ऐसा कहा निगम कल्प तरु का एकदम प्रपक्व गलित फल है जिसमें गुठली नहीं है, रेशे नहीं है, छिलका नहीं है, गुरु परंपरा के माध्यम से हुआ है। प्रेम की ध्वजा है गोपियां, दर्शकों कृष्ण स्वयं कहते हैं न पा रहे हम निर्बद्ध सैनिक, मैं तुम्हारा निमित्त से उन्मुक्त नहीं, अपने साधु गुणों से ही तुम मुक्त हो सकती हो। इस तरह से उद्धव जी लौट करके आए, वारण नहीं सके। हाँ, प्रार्थना में जो है तीन लता गुण बन जाओ, तभी उद्धव कुंड वहां एक है। उद्धव कुंड में घास बने हुए हैं अभी भी अभिशाप होता है, कृष्ण की लीलाएं होती हैं, अभी भी वहां लीला हो रही, किंतु इस समय जो माया का संपर्क हम लोगों से नहीं है इसलिए नहीं देख पा रहे, किंतु ब्रज में सब समय कृष्ण की लीलाएं होती हैं। इसका प्रमाण भी है, ब्रज में लीला होती है, वृंदावन में सेवा कुंज है, रात में बंदर अपने आप भाग जाते हैं, कोई भी कोई आदि व्यक्ति नहीं रह सकता, और रात में यदि कोई रह जाए तो वो पागल हो जाएगा या मर जाएगा, या भी मार्ग में का नहीं सकता। कभी परीक्षा करने के लिए कोई गए, जीत पकड़ करके नहीं गए बाहर, वहीं रह गए और रात में मर गए, दूसरा एक पागल बन गया जो कभी आज तक बात ही नहीं किया। ब्रज में लीलाएं होती है, कभी कभी कोई वैसा भक्त उसको दर्शन करता है, संत लोग दर्शन करते हैं। तो इस तरह से ये उद्धव जी का महात्मा हमने बनता है, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं मिला कृष्ण को जो प्रतिनिधि रूप में अपने माता पिता को सांत्वना जाने के लिए, गोपियों को सांत्वना देने के लिए भेजा, ये उद्धव की महिमा है, इनमें ममता है कृष्ण के प्रति। आज यही तक रहे, अभी
अब कल बतलाए।